एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ग्रंथ सार में स्वागत। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो कह सकते हैं कई पीढ़ियों के दिलों में घर कर चुकी है, लुइजा मे एलकॉट की लिटिल वुमेन।
हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक पूरी दुनिया है जिसमें परिवार है, सपने हैं और बड़े होने की वो खट्टी मीठी सच्चाइयाँ, वो सब कुछ है।
बिल्कुल। और इसकी लेखिका लुइजा मे एलकॉट 19वीं सदी की अमेरिका की एक बहुत ही जानी मानी और प्रभावशाली लेखिका थी।
जी,
उनका परिवार भी मतलब काफी प्रगतिशील सोच वाला था। पिता ब्रॉन्सन एलकॉट शिक्षक और दार्शनिक,
और माँ अबिगेल मे एलकॉट समाज सुधारक थीं, महिलाओं के हक के लिए लड़ती थीं। ये लोग ट्रांसेंडेंटलिस्ट दर्शन से जुड़े थे।
हाँ, वो सोच जो व्यक्ति की अंतरात्मा, सहज ज्ञान और प्रकृति को बहुत मतलब महत्व देती थी। और इस माहौल का असर लुइजा के लेखन पर साफ दिखता है, खासकर सामाजिक न्याय और महिलाओं की आज़ादी जैसे मुद्दों पर।
दिलचस्प बात यह भी है कि लिटिल वुमेन लिखने से पहले उन्होंने परिवार चलाने के लिए क्या क्या नहीं किया। दर्जी का काम, गवर्नेंस, घरेलू सहायिका।
हाँ, और यहाँ तक कि अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान नर्स का काम भी किया। सोचिए, उन अनुभवों ने उन्हें जिंदगी की मुश्किलों और इंसानी हिम्मत को कितना करीब से दिखाया होगा।
बिल्कुल। और फिर 1868-69 में लिटिल विमेन छपी। कहते हैं प्रकाशक के कहने पर लिखी थी, अपने ही बचपन और परिवार की यादों के आधार पर।
ये वो दौर था जब अमेरिका गृह युद्ध से गुजर रहा था, समाज बदल रहा था, महिलाओं की भूमिका, उनकी शिक्षा, इन सब पर नई सोच उभर रही थी।
और इस किताब ने न सिर्फ उस बदलाव को दिखाया बल्कि उसे आगे बढ़ाने में भी एक तरह से मदद की। इसके यथार्थवादी जटिल महिला पात्रों ने इसे तुरंत सफल बना दिया।
तो आज की हमारी चर्चा इसी युगांतरकारी उपन्यास पर केंद्रित रहेगी। हम इसकी कहानी, इसके यादगार किरदारों की यात्रा और इसके मूल विषयों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल। तो कहानी हमें ले चलती है मैसाचुसेट्स के कॉन्कर्ड शहर। समय है गृह युद्ध का
और हम मिलते हैं मार्च परिवार से। चार बहनें मैग, जो, बेथ और एमी।
कहानी शुरू होती है क्रिसमस की शाम से। घर के पिता वो सेना में पादरी बनकर गए हुए हैं और परिवार पैसों की तंगी से गुजर रहा है,
जिसे वो भद्र गरीबी कहते थे। मतलब पढ़े लिखे संस्कारी लोग पर आर्थिक स्थिति कमजोर, जिसका समाज में उनकी जगह पर असर पड़ता था, है ना?
हाँ बिल्कुल। लेकिन इसी माहौल में उनकी माँ मार्मी घर को प्यार और नैतिक मूल्यों से भर देती हैं। वो सिर्फ माँ नहीं है,
नहीं, वो एक गाइड है, एक दोस्त जैसी। यहीं से उपन्यास का कह सकते हैं दिल धड़कना शुरू होता है।
हाँ, ये चार अलग अलग मिजाज की बहनें कैसे अपनी पहचान बनाती हैं, अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच वो संतुलन कैसे साधती हैं, जिंदगी की चुनौतियों का सामना कैसे करती हैं।
और हैं भी कितनी अलग चारों। सबसे बड़ी मैग 16 साल की, सुंदर, सुशील।
वो एक तरह से उस जमाने की पारंपरिक लड़की का सपना देखती है, अच्छा घर, समाज में मान सम्मान।
लेकिन उसके मन में कशमकश भी चलती रहती है, अमीर दोस्तों की तरह जीने की चाहत।
हाँ, पर आखिर में वो लॉरी के ट्यूटर जॉन ब्रुक के प्यार को चुनती है, जो ज्यादा अमीर नहीं है।
तो मैग की कहानी दिखाती है कि सादगी और रिश्तों की गर्माहट में भी असल खुशी मिल सकती है। वो पारंपरिक रास्ता चुनती है, लेकिन उसे भी एलकॉट ने इज्जत और एक उद्देश्य के साथ पेश किया है।
फिर आती है जो, यानी जोसेफीन, 15 साल की। मेरे ख्याल से वो किताब की जान है, बिल्कुल बिंदास।
हाँ।
थोड़ी लड़कों जैसी, जिसे सिलाई कढ़ाई से ज्यादा लिखने पढ़ने का जुनून है, लेखिका बनना चाहती है। थोड़ी तेज है, गुस्से वाली भी, पर दिल की बहुत अच्छी और वफादार। लगता है जैसे लुइजा मे एलकॉट ने खुद को ही जो के किरदार में ढाल दिया।
और ये बहुत दिलचस्प है कि जो का किरदार कितना जटिल है। वो सिर्फ लिखने में कामयाब नहीं होती बल्कि अंदर से भी बदलती है, सब्र करना सीखती है,
अपने गुस्से पर काबू पाती है।
हाँ।
और जब वो अपने बचपन के दोस्त लॉरी के प्यार को ठुकराकर बाद में एक अधेड़ उम्र के समझदार प्रोफेसर फ्रेडरिक भेयर से शादी करती है,
तो ये दिखाता है कि वो शायद, नहीं निश्चित रूप से, एक जोशीले रोमांस से ज्यादा आपसी समझ और बौद्धिक बराबरी को अहमियत देती है।
बिल्कुल। उस जमाने के हिसाब से ये काफी क्रांतिकारी सोच थी।
हाँ।
जो का किरदार आज भी मतलब नारीवादी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
तीसरी बहन है बेथ, 13 साल की, वो घर का सुकून है।
हाँ बिल्कुल, शांत प्यारी सी। संगीत का शौक है उसे, पर बहुत शर्मीली है।
और दिल की इतनी साफ कि सबकी मदद करने को तैयार।
बेथ का सफर उसके शर्मीलेपन से बाहर आने का है, हालांकि वो अपनी मासूमियत और नेकी वो बनाए लगती है।
कहानी का एक बहुत भावुक मोड़ तब आता है जब वो पड़ोस के गरीब हामल परिवार की देखभाल करते हुए स्कारलेट फीवर से बीमार पड़ जाती है।
उफ, वो बहुत ही मार्मिक हिस्सा है। बाद में उसकी मौत दूसरे भाग में न सिर्फ बचपन के खो जाने का दुख दिखाती है,
बल्कि शायद ये भी सवाल उठाती है कि क्या हद से ज्यादा नेकी, खुद को भूल जाना भी ठीक है? ये सवाल उठता है।
सही कहा। और सबसे छोटी 12 साल की एमी
शुरुआत में थोड़ी नखरीली लगती है, अपनी खूबसूरती पर इतराने वाली।
हाँ थोड़ी सी, उसे कला का शौक है, पेंटिंग करती है।
लेकिन एमी का किरदार बहुत खूबसूरती से बदलता है। वो धीरे धीरे एक समझदार युवती बनती है।
हाँ, अपनी गलतियों से सीखती है, दूसरों का ख्याल रखना सीखती है। उसकी कला की तरफ रुझान जो कि लिखने के जुनून जैसा ही है।
पर वो ये भी समझ जाती है कि शायद उसमें वो महान कलाकार बनने वाली बात नहीं है।
और उसका लॉरी के साथ रिश्ता, वो भी वक्त के साथ गहरा होता है। एक ज्यादा परिपक्व प्यार की कहानी।
आपसी सम्मान और समझ पर आधारित। ये दिखाता है कि प्यार पहली नजर वाला ही नहीं होता, कभी कभी वो धीरे धीरे पनपता है।
बिल्कुल। और इन सबके बीच है मार्मी, श्रीमती मार्च। वो वाकई घर की धुरी हैं, समझदार, धैर्यवान,
हमेशा सही सलाह देने वाली। लेकिन क्या सिर्फ आदर्श माँ? नहीं ना।
हाँ,
एल्कॉट उन्हें सिर्फ एक आदर्श बनाकर नहीं छोड़ती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिखाती है कि मार्मी भी अपने गुस्से से लड़ती हैं। इससे वो हमें ज्यादा सच्ची, ज्यादा अपनी सी लगती हैं।
हाँ, और एक और अहम किरदार को नहीं भूलना चाहिए, लॉरी।
हाँ, थियोडोर लॉरेंस, पड़ोस में रहने वाला अकेला अमीर लड़का जो जल्दी ही मार्च परिवार का हिस्सा बन जाता है। प्यारा है, थोड़ा शरारती भी।
लॉरी का किरदार भी सीखता है, उसे जिंदगी में अनुशासन और मेहनत का मतलब समझ आता है।
जब जो उसका प्यार ठुकरा देती है तो वो थोड़ा भटकता है सही रास्ते से।
हाँ, लेकिन यूरोप में एमी के साथ वक्त बिताकर वो ज्यादा समझदार बनता है, और आखिरकार एमी में उसे अपना सच्चा साथी मिलता है।
उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक अमीर लड़का भी जिम्मेदार और नेक इंसान बन सकता है।
तो इन किरदारों की जिंदगी की कहानी आगे कैसे बढ़ती है? शुरुआती हिस्से तो उनके रोजमर्रा के संघर्षों और छोटी छोटी खुशियों से भरे हैं, जैसा आपने बताया।
हाँ, जैसे वो क्रिसमस वाला सीन, पहले उदासी की तोहफे नहीं है, पर फिर माँ के लिए तोहफे खरीदने का फैसला। ये छोटी सी बात ही पूरी किताब का मिजाज तय कर देती है
कि देने में ही असली खुशी है।
बिल्कुल। फिर हम देखते हैं मैग गवर्नेस का काम कर रही है, जो अपनी गुस्सैल आंटी मार्च के साथ रहती है और छुप छुप कर सनसनीखेज कहानियां लिखती है।
बेथ घर संभालती है, पियानो बजाती है।
और एमी स्कूल में अपनी गरीबी की वजह से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है। ये सब चलता रहता है।
यहीं से उनके किरदारों की नींव पड़ती है, उनकी छोटी छोटी मुश्किलें, उनके सपने, उनकी अच्छाइयां और कमियां सब सामने आने लगती हैं।
और ये विषय भी उभरता है कि मुश्किलों के बावजूद कैसे खुश रहा जाए, कैसे दूसरों का भला करके खुद को बेहतर बनाया जाए।
कहानी में मोड़ तब आता है जब उनकी मुलाकात लॉरी से होती है, है ना?
हाँ, उसकी दोस्ती से इन बहनों की दुनिया थोड़ी और खुल जाती है। लॉरी के दादाजी मिस्टर लॉरेंस भी एक तरह से उनके लिए पिता जैसे बन जाते हैं।
यहाँ एल्कॉट बड़ी खूबसूरती से समाज के अलग अलग वर्गों के बीच के फासलों को दिखाती हैं, और ये भी कि कैसे दोस्ती और इंसानियत इन फासलों को मिटा सकती है।
फिर एक मुश्किल दौर आता है जब मिस्टर मार्च बीमार पड़ जाते हैं और मार्मी को वॉशिंगटन जाना पड़ता है।
अब बहनों को घर संभालना है, ये उनके लिए एक इम्तिहान जैसा होता है।
और इसी बीच वो घटना होती है जो दिल दहला देती है, बेथ का बीमार पड़ना।
हाँ,
वो पड़ोस के गरीब बच्चों की मदद करते हुए बीमार पड़ जाती है, स्कारलेट फीवर।
ये कहानी का एक बहुत ही भावुक और अहम हिस्सा है। पूरा परिवार डर जाता है, सब एक साथ आ जाते हैं।
और जब बेथ ठीक होती है तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। ये दिखाता है कि कैसे मुसीबतें हमें तोड़ भी सकती हैं और जोड़ भी सकती हैं।
कहानी आगे बढ़ती है और हर बहन की जिंदगी अपना रास्ता लेती है। मैग और जॉन ब्रुक की प्रेम कहानी,
जो कि कहानियां छपने लगती हैं।
एमी कला सीखने यूरोप जाती है।
एल्कॉट कई कहानियों को एक साथ बहुत अच्छे से बुनती हैं।
हाँ, बहुत कुशलता से। और फिर वो पल आते हैं जब उन्हें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं।
मैग पैसों की चिंता के बावजूद जॉन से शादी करती है।
प्यार को आराम पर तरजीह देती है।
जो को लिखने में कामयाबी मिलती है, पर उसे डर है कि कहीं शोहरत उसकी कला की ईमानदारी छीन ना ले।
और एमी समझ जाती है कि वो शायद महान पेंटर ना बन पाए, और अपनी जिंदगी को नया मोड़ देती है।
ये दिखाता है कि वो अब बड़ी हो गई हैं, वो सिर्फ हालात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही बल्कि सोच समझकर अपनी जिंदगी चुन रही हैं।
बिल्कुल, पहले हिस्से के आखिर में पिता घर लौट आते हैं, परिवार पूरा हो जाता है, एक और क्रिसमस आता है।
हाँ, लेकिन इस बार तोहफों से ज्यादा उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और समझ है। ये एक तरह से कहानी को सुकून भरा मोड़ देता है।
ये सब पढ़ते हुए या सुनते हुए भी ऐसा लगता है जैसे हम भी मार्च परिवार का हिस्सा बन गए हों, उनकी खुशियों में खुश, उनके दुखों में दुखी।
सही कहा, और ये जुड़ाव इसलिए बनता है क्योंकि एलकॉट सिर्फ कहानी नहीं कह रही, वो जिंदगी के गहरे सबक भी दे रही हैं। एक मुख्य विषय है नैतिक शिक्षा का।
हाँ, आपने जॉन बनियन की किताब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का जिक्र किया था, उसका प्रभाव साफ है। वो खेल जो बहने खेलती थी,
हाँ, वो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वाला खेल, जैसे मैग अपने घमंड और अमीर बनने की चाहत से लड़ती है, जो अपने गुस्से से,
बेथ अपने डर और शर्मीलेपन से,
और एमी अपनी खुदगर्जी से। हर कोई अपनी निराशा की खाई से गुजरता है और कुछ सीखता है।
एक और बड़ा सवाल जो किताब उठाती है वो है एक औरत के लिए अपनी निजी ख्वाहिशों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
हाँ, खासकर जो कि किरदार में ये कश्मकश साफ दिखती है, उसे आजादी चाहिए, अपना नाम बनाना है, पर वो अपने परिवार से भी बहुत प्यार करती है।
और एक एमी भी, जिसे कला में नाम कमाना है पर समाज उससे एक अच्छी पत्नी और माँ बनने की उम्मीद रखता है। ये दुविधा तो ये तो आज भी उतनी प्रासंगिक है।
बिल्कुल, किताब समाज में पैसे और क्लास के फर्क को भी दिखाती है। मार्च परिवार की भद्र गरीबी का असर उनके रिश्तों, मौकों, आत्मसम्मान पर पड़ता है।
एमी को स्कूल में ताने सुनने पड़ते हैं, मैग अपने अमीर सहेलियों के बीच असहज महसूस करती है।
लेकिन किताब ये भी जोर देकर कहती है कि इंसान का चरित्र उसकी माली हालत से ज्यादा मायने रखता है।
ये बात मार्मी के किरदार से और घर के माहौल से भी जाहिर होती है, और शायद उपन्यास की सबसे अहम बात यही है, घर और परिवार की ताकत।
हाँ, एलकॉट दिखाती है कि घर सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि वो जगह है जहाँ प्यार, नेकी और सही गलत की समझ पैदा होती है। मार्मी का असर सिर्फ बेटियों पर नहीं, लॉरी और मिस्टर लॉरेंस जैसे मर्दों पर भी पड़ता है। ये उस जमाने के लिहाज से बड़ी बात थी, ये कहना कि महिलाओं का प्रभाव सिर्फ घर तक सीमित नहीं बल्कि उनका नैतिक और बौद्धिक असर समाज पर भी पड़ सकता है।
किताब ये भी पूछती है कि सच्ची नारी होने का मतलब क्या है, और कोई एक जवाब देने के बजाय
वो अलग अलग किरदारों के जरिए दिखाती है कि औरतें कई तरह से अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकती हैं। जैसे मैग घर बसाकर खुश है तो जो लिख कर,
एमी कला और रिश्तों में खुशी ढूंढती है, और बेथ सेवा और संगीत में। कोई एक रास्ता सही या गलत नहीं है,
जरूरी ये है कि आप अपने मन की सुने, ईमानदार रहें और दूसरों का ख्याल रखें।
और कला का जिंदगी से क्या रिश्ता है, ये भी एक अहम सवाल है, खासकर जो और एमी के जरिए।
हाँ, क्या कला सिर्फ मनोरंजन के लिए है या उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी भी है? शोहरत और कला की ईमानदारी के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए?
ये सवाल एलकॉट ने उठाए हैं। जो का संघर्ष कि वो ऐसी कहानियां लिखें जो लोगों को पसंद भी आएं और नैतिक रूप से सही भी हों, शायद ये एलकॉट की अपनी कश्मकश रही होगी।
हो सकता है, किताब की भाषा और कहने का अंदाज भी बहुत खास है। लेखिका जैसे सब कुछ देख रही हैं, हर किरदार के मन की बात जानती हैं।
हाँ, वो हमसे यानी पढ़ने वालों से सीधे बात करती हैं, जैसे कोई माँ या बड़ी बहन समझा रही हो, लेकिन डांट कर नहीं, प्यार से।
और कहानी का ढांचा भी घर की जिंदगी जैसा है, मौसम बदलते हैं, त्योहार आते जाते हैं, रोजमर्रा के काम होते हैं।
बार बार क्रिसमस का आना दिखाता है कि वक्त कैसे गुजर रहा है और किरदार कैसे बदल रहे हैं। ये घर और घरेलू जिंदगी को अहमियत देता है।
इसमें प्रतीक भी बहुत है, जैसे बेथ का पियानो उसकी कला और सपनों का प्रतीक है,
जो का अटारी वाला कमरा उसकी आजादी और लिखने की जगह,
बढ़ीचा दिखाता है कि कैसे मुश्किलों के बावजूद जिंदगी पनपती है, किरदारों की बातचीत भी उनके स्वभाव को दर्शाती है।
हाँ, उनकी बातें सुनकर ही पता चल जाता है कि कौन कैसा है। जो की बातों में जोश है, मैक की बातों में तहजीब।
एमी थोड़ा दिखावा करती है और बेथ धीरे से बोलती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं उनकी बातें भी बदलती हैं, ज्यादा समझदारी भरी हो जाती हैं।
और वो पल जब कोई किरदार चुपचाप कोई कुर्बानी देता है और दूसरों को पता भी नहीं चलता।
हाँ, जैसे बहनों का अपना क्रिसमस का नाश्ता किसी गरीब परिवार को दे देना,
या बेथ का अपनी बीमारी की चिंता किसी को न बताना, ये चीजें कहानी को और गहरा बना देती हैं, बहुत छू जाती हैं।
बिल्कुल, ये किताब इसीलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये जिंदगी की सच्चाइयों को, परिवार के रिश्तों को, बड़े होने के उतार चढ़ाव को, सपनों के टूटने और बनने को बहुत ईमानदारी से दिखाती है।
और उस जमाने के हिसाब से ये क्रांतिकारी थी। इसने लड़कियों को सिर्फ शादी का इंतजार करती हुई गुड़िया नहीं दिखाया,
नहीं, बल्कि उन्हें सोचने समझने वाले, सपने देखने वाले इंसानों के तौर पर पेश किया। इसने न जाने कितनी लड़कियों और लेखिकाओं को हौसला दिया होगा।
ये सोचना भी मतलब कमाल लगता है कि उस वक्त ऐसी कहानी पढ़ना कितना नया और ताकत देने वाला रहा होगा, जहां लड़कियां आजादी और अपने करियर के बारे में सोच रही हैं।
हाँ, और इसने घरेलू जिंदगी को, जिसे अक्सर कमतर आंका जाता था, उसे भी सम्मान दिया, दिखाया कि घर संभालने, रिश्ते निभाने में भी अपनी एक गरिमा और महत्व है।
और ये भी कि एक ही परिवार में अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं और ये फर्क ही रिश्ते को खूबसूरत बनाता है।
ये हमें सिखाती है कि हर किसी का रास्ता अलग होता है और हमें अपनी जगह ढूंढनी होती है।
सही कहा। ये किताब इसलिए आज भी उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी लगती है क्योंकि ये परिवार, खुद को ढूंढने और ज़िंदगी को मकसद के साथ जीने की उन सच्चाइयों की बात करती है जो कभी पुरानी नहीं होती।
और ये याद दिलाती है कि मामूली सी लगने वाली ज़िंदगी में भी कितनी गहराई और कितना मतलब छुपा हो सकता है।
तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में, जहां महिलाओं के पास पहले से कहीं ज्यादा मौके हैं, क्या लिटिल विमेन की बहनों के संघर्ष और उनकी सीखें अब भी उतनी ही मायने रखती हैं, या आज की चुनौतियां कुछ अलग हैं? क्या वो संतुलन अब भी उतना ही मुश्किल है?
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।